ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टभयेष्वरेषु नित्यं भगवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। एते चंसाकलपुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियव्याकुलं लोकं मृजन्ते युगे युगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरं परम। निगम कल्प तरोर गिरिदं पलं सुखमुगदं मृतदेव संमृतं विविध भरकृतं रसमालयं मुहुरो राशिक भुवि भावुकः। हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या 47 कौन सा लिखा है इसमें 47। ठीक है पहले हाँ 40 श्लोक पढ़ रहा हूँ पहले, इसके कोई तत्पर्य नहीं है, इसके बाद साथ ही साथ 47 श्लोक संख्या पढ़ रहा है चरण करेंगे। शिशु का वाचा पहले श्लोक मैं बताता हूँ और द्वितीय श्लोक साथ ही साथ पढ़ेंगे उच्चारण करेंगे। अतैवं मीरितो राजन साधारं त्रिदशैर हरेन समुपस्थानमकर्ण्य प्राहतान अभिनंदितम्। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की सच्ची स्तुति की तो उससे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। श्री भगवान वाचां प्रीतोहं वसुरा श्रेष्ठां मदुपस्थानि विद्यायां आत्मैश्वर्यो स्मृति पुंसम् भक्तिश्चैव ययामये। श्री भगवान वाचम। श्री भगवान ने कहा, प्रीतम प्रसन्न अहम मैं व तुमसे सूर श्रेष्ठ हे देवताओं में श्रेष्ठ मत उपस्थान विद्याया महान ज्ञान तथा स्तुतियों से आत्मा ऐश्वर्य स्मृति अपनी परम दिव्य स्थिति की स्मृति पुंसाम मनुष्य की भक्ति भक्ति च तथा एव निश्चय ही यया जिससे मई मुझको। अनुवाद और तत्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के श्री भगवान ने कहा, हे प्यारे देवो, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पाद को स्मरण करता रहता है, जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है। इस भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। तत्पर्य, श्री भगवान का अन्य नाम उत्तम श्लोक है, जिसका तात्पर्य है कि चुने हुए श्लोकों में उनकी चुने हुए श्लोकों से उनकी स्तुति की जाती है। भक्ति का अर्थ है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्थात विष्णु का जप तथा उन्हीं का श्रवण। त्रिगुणवादी कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि वे श्री भगवान की साकार प्रार्थना नहीं करते। निर्गुणवादी कभी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे श्री भगवान की साकार प्रार्थना नहीं करते। यदि कभी प्रार्थना करते भी है तो वो श्री भगवान को अर्पित नहीं होते। कभी कभी वे भगवान को अनाम कहकर अपने अपूर्ण ज्ञान की पूर्ण ज्ञान का परिचय देता है। वे अप्रत्यक्ष रूप से या कहकर सदैव प्रार्थना करते हैं, आप यहाँ है, आप वो है, किंतु वे यह नहीं जानता कि किसकी प्रार्थना कर रहा है। किंतु भक्त सदैव साकार की प्रार्थना करता है। भक्त कहता है, गोविंदम अदि पुरुषम तमहम बजामी, मैं गोविंद या श्री कृष्ण को सदा नमस्कार करता हूँ। प्रार्थना करने की यही विधि है। यदि भक्त इस प्रकार साकार की प्रार्थना करता है तो वो शुद्ध भक्त बने तथा वापस भगवान के पास भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिदंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनम तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपगदामयं ददाति सापदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुत पदकमल श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगना रघुनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगना ललित श्री विशकन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिककांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च परीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Harir Nama Harir Nama Eva Kevalam Kulam Nastyeva 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 Gatiranyata Prito Hamba Sura Srishta Madhupastana Vidyaya Atmaishwarya Smriti Pumsam Bhaktis Chaiva Yayamai. Sri Bhagavan ne kaha, hey pyare devo, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञानपूर्वक मेरी स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद को स्मरण करता रहता है, जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है। इस भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है, मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। ये देवता हैं, बहुत सारे श्लोक उच्चारण किए थे, स्तुति अर्पण किए भगवान के गुणगान में, और इससे भगवान संतुष्ट हो गए थे। भगवान श्री कृष्णा यों के अवतार परम दयालु है, और तुरंत से सेवा करते हुए वे संतुष्ट हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, और जैसे रूप गोस्वामी पाद उन्होंने उल्लेख किया है, भक्ति रस अमृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग है, और इसके अंतर्गत पहले कहता है श्री गुरुपद आश्रय, गुरु के आश्रय में रहते हुए अच्छे तरह से भजन कर सकता है, अच्छे तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। गुरुजान बताता है कि कैसे करना है, किस भाव से करना है, इसके बाद बताता है क्या करना क्या ना करना है। तो इसमें उल्लेख है भक्ति रस अमृत सिंधु, और इसके अंतर्गत नवविध भक्ति ये 9 अंग भी उल्लेख किया है, जो सप्तम स्कंद में उल्लेख किया है। प्रहलाद महाराज पितिजी को हिरण्यकशिपु को बताते थे, और प्रभुपद तत्पर्य में उल्लेख किया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम परसेवनम आचनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मा निवेदनम, और अंत में भक्ति के 5 महत्वपूर्ण अंग है। महाप्रभु भक्त लोग को बताते थे, और उन्होंने उल्लेख किया है कृष्ण रस के गोस्वामी चैतन्य चैतन्यमृत में, और पूर्वाचार्यों ने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। साधु सांगा भगवत श्रवण सजातीय भक्त के संग में प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा धामवास, और जो सबसे महत्वपूर्ण है नाम कीर्तन, जो कलियुग के धर्म है नाम कीर्तन। तो सबसे पहले भगवान के बारे में श्रवण करना है, गुरुजान से उनके मुकर अरविंद से, तत्पश्चात जो हमने सुना है दूसरे को बताना है, बता सकता है। इसे करते हुए ये मन में रह सकता है जो हमने सुना है, अगर दूसरे को बताता है तो रहता है मन में। तत्पश्चात ठाकुर जी की सेवा कर सकता है जब भगवान के स्मरण करता है, और पद सेवनम, और इसके बाद तो मूर्ति सेवा भी महत्वपूर्ण है, ठाकुर जी की सेवा करना अच्छा विग्रह के। इसके बाद फिर से कहते हैं वंदनम, ये अलग अलग स्तुतियाँ स्ताव स्तोत्र उच्चारण करना है, और हमेशा दस्य भाव में रहना है। दस्याम, मैं कृष्ण के नित्य दास हूँ। प्रभुपद श्लोक के तात्पर्य में, ये श्रवणम कीर्तनम श्लोक में की तात्पर्य में बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने दिया है और उल्लेख किया है कि बहुत महत्वपूर्ण है भगवान का श्रवण करना। और इसके बाद दस्यम के बारे में बोला उन्होंने, उल्लेख किया है कि हमको हमेशा इस भाव में रहना चाहिए कि हम भगवान के नित्य दास है, तब अच्छा तरह से सेवा कर सकता है। तो समझना चाहिए, अनुभव चाहिए, अनुभव करना चाहिए, इसका याद निरंतर रखना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ अपितु आत्मा हूँ, कृष्ण के नित्य दास हूँ। तब तो इस भौतिक स्थूल और सूक्ष्म शरीर हम इससे परे है, यदि आत्मिक अवस्था है तो। और ये वास्तविक ज्ञान है जिसमें उल्लेख भी किया है कि ये जो देवता लोग स्तुति अर्पण किया है, और यहाँ पर तो भगवान कहता है कि ज्ञान उनके ज्ञान के ज्ञान के कारण मनुष्य ऐसा ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान जब है तब अच्छा तरह से सेवा कर सकता है, स्ताव स्तुतियाँ उच्चारण कर सकता है। और सबसे पहले ज्ञान यह है कि हमको ये संबंध ज्ञान है, हम शरीर नहीं है अपितु आत्मा है, आध्यात्मिक अवस्था पे है तब अच्छा तरह से सेवा होता है, तब वास्तव में सेवा होता है। इसलिए हमेशा इसका याद रखना। तो संबंध ज्ञान के बाद अभी देह ज्ञान, तो सीखना है कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करना है, कैसे किस भाव से जप करना है, और अलग अलग सेवा जो गुरु जान देता है उनसे पूछताछ करना चाहिए कि कैसे करना है। स्वस्थ पड़ते हुए ज्ञान प्राप्त करना है कि अच्छा तरह से सब कुछ कैसे करना है, अभी देह ज्ञान, तब उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है प्रयोजन ज्ञान। तो जब उस अवस्था पे है, आध्यात्मिक अवस्था पे है, तब अच्छा तरह से स्ताव स्तुति उच्चारण कर सकता है विनम्र भाव में रहते हुए। और जैसे प्रभुपाद ने इंगित किया है इस तात्पर्य में, ये ब्रह्मा संहिता के श्लोक जिन्होंने उच्चारण किए थे ब्रह्मा जी, ये प्रसिद्ध श्लोक है संहिता। और ठाकुर जी की सेवा में प्रतिदिन पुजारी जो मंदिर में रहता है, जो अच्छा तरह से सेवा करता है, ये श्लोक उच्चारण करता है ब्रह्म समिति के। जब ठाकुर जी की महाभिषेक होता है उसी समय भी भक्त लोग ब्रह्म समिति के श्लोक उच्चारण करता है, बहुत सुंदर स्तुतियां है। और जैसे या मेरे जो अभिदेय ज्ञान के मूर्ति है गोविंद देव, तो और प्रभुपाद ने बहुत सारे जगह पे मंदिर में ठाकुर जी के नाम दिया था राधा गोविंदा, क्योंकि गोविंद देव ये मेरे जो सेवा जो होता है जब उस अवस्था पे पहुँचते आदि अभिदेय ज्ञान, तब ये ग्रहण करता है गोविंद देव। इसलिए अलग अलग जब जैसे कलकत्ता में दिया था, दिया है राधा गोविंदा नाम, और अमेरिका में भी कई जगह में, और यहाँ पर भी देने वाले थे राधा गोविंदा हमारे मंदिर में, लेकिन तो दूसरे भक्त ने बोला, प्रभुपाद से अनुरोध किए थे, निवेदन किए थे कि कृपा करके श्याम सुंदर नाम दे दीजिए। तो प्रभुपाद बहुत दयालु है, बोले ठीक है हाँ राधा श्याम सुंदर नाम दे देंगे। और वास्तव में ये जो भगवान के हर नाम तो सुंदर है, आध्यात्मिक है, पूर्ण है, लेकिन फिर भी इनमें से भी गोपियाँ जे जो उनको जो सबसे अच्छा नाम जिनको सबसे अच्छा तरह से जो उनको अच्छा लगता है और उच्चारण करते हैं, ये श्याम सुंदर नाम है, श्याम श्याम सुंदर कहती है, और तो बहुत सुंदर नाम है। और तो और लेकिन दूसरे बहुत सारे मंदिर में राधा गोविंदा या गोविंद माधव नाम दिया है, क्योंकि गोविंद देव ही हमारे सेवा जो हम कर रहे हैं ग्रहण करता है। और यहाँ पर भी समझना चाहिए कि वास्तव में जैसे हमारे मंदिर में राधा श्याम सुंदर नाम दिया गया है, लेकिन श्याम सुंदर तो मदन मोहन गोविंद देव गोपीनाथ से बिना है, तो ये भी ग्रहण करते हैं हमारी सेवा। जैसे राधा रमान मंदिर में ये भी कहता है कि राधा रमान तो नाम है, प्रदान है, लेकिन ये भी बोलता है कि वास्तव में राधा रमान ये इसमें तो मदन मोहन गोविंद देव और गोपीनाथ उनके चरण कमल मदन मोहन के समान है, और उनके वक्षस्थल गोपीनाथ के मूर्ति के समान है, और मुखमंडल गोविंद देव के, ऐसे कहता है। तो अपने ठाकुर जी में तो यह है मदन मोहन गोविंद देव और गोपीनाथ देखता है, अनुभव कर सकता है, तो ग्रहण करता है सेवा। तो ये प्रभुपद कहता है कि ठाकुर जी की अभिषेक के समय ये ब्रह्म समित श्लोक को चरण कर सकता है, इससे ठाकुर जी भगवान प्रसन्न हो जाता है। और पहले श्लोक तो है ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व करण कारणम। मूल रूप कृष्णा ही है, स्वयं भगवान कृष्णा है, जिसे भगवता में भी उल्लेख किया है, इति चमसा कल्पम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान एक ही है, ये कृष्णा है, या श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्णा के भिन्न स्वरूप है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहायान्या, तो परमेश्वर है, मूल रूप है कृष्णा, लेकिन उनके दूसरा नाम है गोविंदा। और इसके बाद तो आध्यात्मिक जगत के बारे में उल्लेख किया है ब्रह्म समित में, और कैसे ये भौतिक जगत प्रकट हो जाता है, और इसके बाद गुणगान कर रहा है भगवान के। सबसे पहले इसमें तो 29 श्लोक संख्या से 55 तक, ये हर श्लोक के अंतिम लाइन ऐसा समाप्त हो जाता है, गोविंदम आदि पुरुषाम तमहम बजामी। तो पहले श्लोक में चिंतामणि प्रकर सन्म सुकल्प वृक्षा लाक्षावृते सुसुरबीर विपालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेवमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजामी। तो इस श्लोक में तो जैसे ब्रह्म संहित के अनेक श्लोक में भगवान के इसमें तो गुणगान होता है, और इसके सुंदर मतलब ये लीलाएं इसमें भी इंगित है, और इसके बाद उनके विस्तार रूप में इसके अंतर्गत है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा, तो ये चिंतामणि धाम है, सर्वृंदावन धाम भौतिक जगत से परे है, ये ब्रजराज इसके महात्म्य भी है और शुद्ध है, ब्रज चिन्मय है, और जब यहाँ पर रहता है तो धाम के प्रभाव से, धाम की कृपा से हम अच्छे तरह से भजन कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमको विनम्र भाव में रहना चाहिए और समझना चाहिए कि हम तुच्छ है। और इसके बाद जब साई भाव है तब प्रभाव धाम के समझ सकता है, और इसे करते हुए जब समझ सकता है तब अच्छा तरीके से भजन कर सकता है। और इसमें श्लोक में, पहले श्लोक में कल्पतरु के बारे में बताता है, ये वृक्ष जो पैर जो होता है ब्रज में, ये कल्पतरु है, मतलब तरु वृक्ष है, पैर है। और जो भी इच्छा भक्त के पास है, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा होना चाहिए कि कैसे आगे जा सकता है, मेरे पास भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो जब वृक्ष के पास जाता है जो कल्प वृक्ष है, जो 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 भी चाहिए हमको ये दे देता है, तो उनके पास भी जा सकता है। और इसमें भी अलग अलग पूर्वाचार्यों के ग्रंथ में ये कल्प वृक्ष के बहुत गुणगान करता है, और इसलिए भक्त लोग वृक्ष के पास भी जाते हैं ब्रज में और कृपा मांगते हैं वृक्षों से। कल्प वृक्ष है, जो भी चाहिए भक्त को मिलता है, जिससे वे आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। और वास्तव में तो सबसे पहले गुरु के पास जाना है, और लेकिन इसके बाद भक्त की कृपा भी चाहिए और ब्रिजवासियों की कृपा चाहिए। और इसमें तो आ जाता है कल्पतरु और तो वृंदावन धाम। सुरभि रविपाल यंतम, और ब्रज में गोलोक वृंदावन ये गाय जो है तो उनके सच्चिदानंद स्वरूप है, और जितने दूध चाहिए तो मिल सकता है, 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, जितना चाहिए मिलता है। और ये तो भगवान की सेवा में लगाता है, मिठाई बनाता है, घी बनाता है, जो रसोई में जरूरत है। लेकिन आजकल क्योंकि कलयुग में है और वातावरण बदल गया है, एकदम शुद्ध नहीं है, और शुद्ध वैष्णव भी कम है, तो इसलिए गाय भी कम दूध देती है। कितने दूध देता है? 10 लीटर, कभी इससे भी कम, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 ज़्यादा से ज़्यादा सुबह या शाम को, क्योंकि घास तो यहाँ पर अभी कम है, घास और इसमें ज़्यादा घास भी सूखा है, तो क्या मिल सकता है इसे। लेकिन कोई देश में जैसे स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा है और मौसम बढ़िया है, तो घास तो गाय के लिए बहुत अच्छा है, और इसे ज़्यादा दूध देता है, यहाँ पर 30-40 दूध देते हैं सुबह और शाम को। लेकिन ये भी कुछ नहीं है, गोलोक वृंदावन जितना दूध चाहिए मिलता है, सुराबी गाय कहलाता है। लक्ष्मी सहस्वतर संभ्रम सेवनामानम, लक्ष्मी देवियां श्री कृष्ण की सेवा करती है, लेकिन इसमें तो ये लक्ष्मी देवियां ये गोपियां है। मूल रूप, जैसे मूल रूप कृष्णा है और दूसरे के विस्तार रूप है, जैसे विष्णु, नारायण इत्यादि, रामचंद्र भगवान भी, और मूल शक्ति शिवती रानी है, और सीता रानी, और जैसे सत्यभामा भी, और ये सब गोपियां ललिता विशाखा श्रीमती रानी के विस्तार रूप है, काय व्यू है। और तो मूल शक्ति रानी है, मूल लक्ष्मी श्रीमती रानी है, दुर्गा देवी भी श्रीमती रानी के विस्तार रूप है, पिछले श्लोक में इंगित किया है ले लक्ष्मी सहस्र सहस्र लक्ष्मी, लेकिन ये गोपियां है जो सर्वोत्तम कृष्ण के प्रिया है, गोपियां भक्त है, सर्वश्रेष्ठ है, ये सब कृष्ण की सेवा कर रहा है प्रेम से। तो जब ये श्लोक जो महापुरुष और जैसे ब्रह्म जी के श्लोक उच्चारण करता है तो उनके भाव हमारे पास आ जाता है और इसे करते हुए भगवान संतुष्ट हो जाता है। और जैसे हमारे पर्वताचार्य ने बहुत सुंदर स्तव स्तुतियां अष्टकम प्रस्तुत किया है, जब ये उच्चारण करते भगवान संतुष्ट हो जाता है। लेकिन आपने भावना से भी दिमाग से भी कुछ जो मन में भी है अगर समस्या है तो भगवान के पास भी जाते हुए प्रार्थना कर सकता है सहायता देने के लिए आगे जाने के लिए भक्ति मार्ग में। तो बहुत महत्वपूर्ण है वंदनम स्तुति अर्पण करना, ऐसे करते हुए भगवान संतुष्ट हो जाता है। आदान प्रदान होता है, भगवान के लिए कुछ कर रहा है तो भगवान तो हमेशा तो तैयार है, सब कुछ हमको दे देता है जो हमको चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से भौतिक दृष्टि से भी। इसलिए हमको निरंतर भगवान की सेवा में लीन होना चाहिए। और विशेष करके जैसे यहाँ पर उल्लेख किया है अलग अलग स्तव स्तुतियाँ अर्पण करना है। और सबसे महत्वपूर्ण तो मंत्र है, ये मां मंत्र है, लेकिन शुरुआत में तो भाव तो ज्यादा नहीं है, भगवान का स्वरूप अनुभव नहीं कर सकते शुरुआत में जब महामंत्र उच्चारण करता है, क्योंकि क्योंकि भौतिक भावना है, मन में भावना में भौतिक चीज आ जाता है। लेकिन ये सब निकालना है चेतोदार परमाजनम, भावना मन दिल साफ करना है अच्छा तरह से, कलमाश निकालना है। और इसके लिए तो सेवक करना चाहिए महामंत्र विनम्र भाव में रहते हुए जप करना है, कीर्तन करना है। लेकिन अलग अलग श्लोक उच्चारण करते हुए जो भाव जो होना चाहिए आ जाता है गुरु की कृपा से, पूर्वताचार्यों की कृपा से, और ऐसे करते हुए तब अच्छा तरह से जप कर सकता है। जैसे एक प्रसिद्ध श्लोक है ब्रज में, कस्तूरी तिलकम ललात पातले वक्षस्थालकौस्तुभम नासाग्रह वरमोक्तिदम करतले वेणुकार कंकणम सर्वांगारी चंदनम सरितम कंते च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो तो विजायते गोपाल चूरमानी। तो भगवान सर ऐश्वर्य पूर्ण है, शक्तिशाली है, सब ज्ञानों के पास है, ज्ञान के स्रोत है, आनंद के स्रोत है, संपत्ति के स्रोत है, लेकिन गोप के रूप में है। गोपाल चूरमानी सर्वश्रेष्ठ गोप है, भगवान ही है, लेकिन अद्भुत लीला उनके है भगवान के कृष्ण के गोप के रूप में है, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। और ब्रह्म जी तो एक बार भी भूल गया और सोचे ये कौन है ये लाला, ये लड़का, ये गोपाल, सोच रहे कि भगवान है, मैं उसको दिखाता हूँ, तो विमोहित हो गया कुछ क्षण के लिए। लेकिन भगवानों को समझाया गोप के रूप में है लेकिन भगवान है, और अनुभव किया ब्रह्म जी कि ये तो भगवान है, तो गोप के सर्वश्रेष्ठ गोप है लेकिन भगवान ही है। पहले हमको समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और हम तुच्छ है, हम कुछ नहीं है। तो विनम्र भाव में रहते हुए भजन करते करते तब भूल सकता है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण मेरे प्रिया है, प्राणनाथ है, कृष्ण मत कृष्ण पित कृष्ण प्राणदान, कस्तूरी तिलकम, लला पे तिलक है, कस्तूरी इसमें मिलाता है, चंदन है लेकिन इसमें कस्तूरी मिलाता है। और लेकिन ये वास्तव में उनकी तिलक जो है ब्रज में सिर्फ वहां पर एक बिंदी है सनाया कि जैसा मंदिर में लगाता है, ये गौरी वैष्णव या महाप्रभु के बाद ऐसा तो स्थापित किया है, लेकिन कभी कभी जैसे पूरे जो होता है तो तिलक लगाता है, सिर्फ एक बूंद यहाँ लगाता है या यज्ञ के बाद। कस्तूरी तिलकम ललात पातले, ललत जो भगवान के या महापुरुष के गुण है, इसमें भी शास्त्र में उल्लेख किया है, उनके लंबे बहुएं हैं और उनके आंख जैसे कमल नेत्र कमल पुष्प के दल के समान है और उनके मुकरविंद भी है कमल पुष्प समान है, सुंदर है, गुलाबी रंग के है और ललत। तो ये शुभ शुभ लक्षण जो होता है महापुरुष के ये है कि ललत जो है बड़े है, तो ललत पे तो भगवान तो महापुरुष, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम उल्लेख किया है कर भजन मुनि, महाप्रभु या कृष्ण या रामचंद्र भगवान के संबंध में उनके गुणगान में, देयम सर्वाभीष्टदोहम तीर्थस्परम शिवचुन शरण्यम प्रीत्याति हम प्रपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ब्रह्म जी शिव जी ये सब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रामचंद्र भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हैं, ऐसे करते जो इच्छा है पूर्ण हो जाता है। तो वक्षस्थल एक कौस्तुभ, वक्षस्थल पे एक कौस्तुभ मणि है। करताले करताले वेणु कंकनम, करताल करा हाथ में, यहाँ पर वेणु वेणु वंशी बजाता है, इससे सब विशेष करके गोपियां विमोहित हो जाती है, लेकिन दूसरे भी गाय जानवर माता पिता इसका बहुत सुंदर जब कृष्ण बजाता है आकर्षित हो जाता है सब, और सुनता है ध्यान से प्रेम से सुनता है कृष्ण कैसे बजाता है वंशी, बहुत सुंदर सबका अच्छा लगता है। लेकिन रात को जब कृष्ण गोपियां बुलाता है तैसे बजाता है वंशी कि सिर्फ गोपियां सुन सकती है, सिर्फ वे आ जाती है कृष्ण से मिलने के लिए रस नृत्य के लिए, और कंगन भी है यहाँ पर, और तो यहाँ पर गले पे मुक्ति माला भी है, मोती माला भी है, गोप स्त्री परिवेष्टित हो परिवेष्टित है गोपियां से, विशेष करके दोपहर के समय राधाकुंड पे ये रात को निकुंज लीला में या रस मंडल में तो उस समय तो गोप के साथ है घर पे, यशोदा माँ है, नंद बाबा है और सेवकगण वहाँ पर है। लेकिन जो अष्टकाली लीला में जो लंबे समय है दोपहर के समय है और रात के समय आध भाग में विभाजित है दिन और रात, और सबसे लंबे समय दोपहर और रात के समय जब गोपियों के साथ है, क्योंकि ये सबसे प्रिया है कृष्ण के सबसे प्रिया है गोपियाँ, इनमें से श्रेष्ठ है श्रीमती रानी। तो जब ये श्लोक का उच्चारण करता है तो भगवान का रूप प्रकट हो जाता है, उनके लुगुण समझ सकता है, और अंत में लीलाएं भी प्रकट हो जाता है। और ये जगह है भक्त लोग जो अच्छा तरह से जप करता है, तो हम कभी प्रयास कर कभी कभी भगवान का स्मरण करने के लिए उनके गुण या लीलाएं अल्प मात्र से लेकिन अच्छा तरह से महामात्र उच्चारण करके, लेकिन जो आगे है ये नाम उच्चारण करते हुए भगवान प्रकट हो जाता है, उनके सुंदर रूप गुण और लीलाएं जीव पे नाचता है भगवान। जब शुद्ध वैष्णव नाम उच्चारण करता है, जीव पे है, दिल में है, मन में है, कान में है, तो हमको प्रयास करना आगे जाके आगे जाने के लिए। तो ये जो श्लोक जो है, जैसे ब्रह्म समित के और ये अमर पूर्वताचार्य के श्लोक अष्टकम स्तुतियां, ये बहुत लाभदायक है आध्यात्मिक दृष्टि से। इससे कर्तव्य भगवान के जो रूप प्रकट हो सकता है, ये भाव जो होना चाहिए प्रकट हो जाता है दिल में। तो इसे करते हुए जब भजन करता है, तो जैसे यहाँ पर भी भगवान स्वयं भगवान कहता है, जो ऐसे करता है तो पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुतियां, निरंतर स्तुतियां यथासंभव जब उच्चारण करता है तो शुद्ध हो जाता है, और जब वैष्णव शुद्ध हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाता है। और जब भगवान के स्वरूप अनुभव कर सकते अपना संबंध, तो शरीर छोड़ने के बाद कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है, और ये हमारी अंतिम गति है, परम गति है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा श्लोक सीखना है और उच्चारण करना चाहिए ठाकुर जी की सेवा में। लेकिन दूसरे समय भी जप के पहले या जप के समय तो अलग अलग श्लोक का स्मरण भी कर सकता है। जैसे वैष्णव ध्यानचंद्र गोस्वामी, जो गोपाल गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिया भक्त, उन्होंने नाम दिया उसको गोपाल, छोटे बच्चे को पंचवर्ष के, जो ध्यानचंद्र नहीं के गुरु थे और कृष्ण पंडित के शिष्य थे। तो ध्यानचंद्र गोस्वामी उन्होंने एक अपना पद्धति में कि किस भाव से ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए एक श्लोक उच्चारण किया है, क्योंकि इसमें उन्होंने भी उल्लेख किया है कि अच्छे तरह से जप करना है तब ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं अच्छे तरह से। तो उन्होंने उल्लेख किया है कि जप करने से पहले एक श्लोक उच्चारण कर सकते हैं। ये है, ध्यायेन वृंदारण यराम्य गोपा गोबीर अलंकृते कादम्बा पदपद चये जमुन जल शीतले राधा सायतम कृष्णम वंशिव तत्परम त्रिभंगलितम देवम भक्तनु ग्राहकारकम। तो वृंदारण्य रम्य ध्यायेन वृंदारण्य वृंदारण्य वृंदावन धाम वृंदावन का स्मरण करना चाहिए, ध्याये ध्यान करना चाहिए। और वहाँ पर कौन है, गोप है और गायें हैं, तो भगवान के साथ है। और कभी कभी जमुना के तट पे है, और इसके बाद वंशीवाद पे, वहाँ पर कल्पतरु तो है वंशीवाद, और वहाँ पर उपस्थित है श्री राधा कृष्ण जोगल, और वहाँ पर वंशी बजाते हुए रहता है। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर उनके सुंदर रूप है, भक्त अनुग्रह कारकम, तो अनुग्रह कृपा देता है, आशीर्वाद देता है, स्वयं देता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शुद्ध वैष्णव के माध्यम से कृपा बसाता है। तो ये श्लोक उच्चारण करते हुए तो उन्होंने बोला कि मां मात्र जप करने से पहले ये श्लोक उच्चारण करना है। तो अलग अलग श्लोक, जैसे दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमदो श्रीमद रत्नागर सिंह सनस्तो श्रीमद राधा शिल गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव अनुस्मरामि। ये वास्तव में भक्त लोग के मदन मोहन गोविंद देव गोपीनाथ के श्लोक जो होते प्रतिदिन उच्चारण करना है। और इनमें से तो साधक के लिए ये सबसे सुंदर श्लोक ये तो है, गोविंद देव के गुणमान गान में दिव्य वृंदारण्य दिव्य वृंदावन में कल्प द्रुमदो, वहां पर भी फिर से कल्प तरु श्रीमद रत्नागर सिंह सनस्तो सिंहसन दिव्य सिंहसन दिव्य वृंदावन में सुंदर सिंहसन के ऊपर विराजमान है श्री राधा गोविंद श्री राधा कृष्णा पृष्ठाली भी सेवमनुस्मरामि। पृष्ठाली भी जो प्रिया है, जब मुकुंद प्रेष्ट है, कृष्ण प्रेष्ट है, ये प्रिय है गोपियां, जो तत्पर रहता है सेवक करने के लिए कृष्ण के स्मरण, इसका स्मरण करना है तो राधा कृष्ण इसके बाद गोपियां मंजारियां का स्मरण करते हुए तो वास्तव में अंत में जप करना है, तब इसमें प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।